पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के सिद्धांत अध्याय राष्ट्रवाद। राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से संगठित एवं एक रूप ऐसा सामाजिक समुदाय है जो आध्यात्मिक जीवन और उसकी अभिव्यक्ति की एकता के प्रति सचेत एवं दृढ़ संकल्पी होता है। गार्नर। विश्व के वर्तमान राज्य राष्ट्रीय राज्य है और राष्ट्रवाद 20वीं सदी का सबसे अधिक प्रभावशाली विचार कहा जा सकता है। अपने प्रत्येक सार्वजनिक कार्य तथा व्यवहार में हम राष्ट्रवाद के भाव से प्रेरित होते हैं और यह भाव आज मनुष्य मनुष्य के बीच का ही नहीं वरन राज्यों के पारस्परिक संबंधों का भी नियामक बन गया है। राष्ट्रवाद का यह भाव अपने सात्विक रूप में अंतरराष्ट्रवाद का सहयोगी है और नागरिकों में देशभक्ति तथा देश प्रेम की उमंग उत्पन्न करता है। किंतु यदि भाव जब उग्र रूप धारण कर लेता है तो इसका परिणाम साम्राज्यवाद और महाविनाशक युद्ध होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद के सामंजस्य उत्पन्न करना ही है। राष्ट्र क्या है? साधारणतया राष्ट्र और राज्य को पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से राज्य और राष्ट्र दो पृथक इकाइयां हैं और इन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। राष्ट्र के आंग्ल पर्यायवाची शब्द नेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है जिसका अर्थ जन्म है, जाति। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर कुछ लोग राष्ट्र का अर्थ एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाली जाति से लेते हैं, परंतु यह अर्थ शुद्ध और संकीर्ण है। राष्ट्र शब्द की व्याख्या व्यापक रूप से करनी चाहिए। राष्ट्र शब्द में एक राजनीतिक धारणा छिपी है और राष्ट्र केवल उसी जाति और भौगोलिक सीमा में रहने वाले समूह को कहा जा सकता है जिनको राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राष्ट्र राज्य और कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है। राज्य में जब जनता की एकता का अभाव होता है तब राष्ट्र बनता है। किंतु ब्राइस जैसे कुछ लेखों का मत है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी यदि किसी देश की जनता में राजनीतिक प्रभुत्व पर अधिकार करने की भावना हो तो उसे राष्ट्र कहा जा सकता है। उनका कथन है राष्ट्र एक ऐसी राष्ट्रता हो जो राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित और राष्ट्र स्वतंत्र तथा स्वतंत्र होने की इच्छा रखती हो। एक राष्ट्र के लिए राजनीतिक प्रभुत्व के अतिरिक्त सांस्कृतिक व सामाजिक एकता भी अधिक जरूरी है। राष्ट्र के सारे सदस्यों में एकता की ऐसी भावना होनी चाहिए जिसके आधार पर वो एक ही सरकार के अधीन रहना चाहे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार की है, राष्ट्र मनुष्य जाति का एक ऐसा भाग है जो अन्य लोगों की तुलना में एक दूसरे के समान सहानुभूति के धागे में संयुक्त है तथा जिनसे एक ही समान सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा हो। इसी प्रकार रैमजे म्योर कहते हैं राष्ट्र व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो कुछ विशेष संबंधों के कारण स्वाभाविक एकता का अनुभव करते हैं। वे संबंध उनके लिए जितने दृढ़ तथा वास्तविक हैं जिसके आधार पर वे साथ साथ प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हैं। यदि उन्हें पृथक पृथक कर दिया जाए तो वे दुख तथा संतोष अनुभव करते हैं तथा उन मनुष्यों की अधीनता स्वीकार नहीं करते जो उनके साधन में भागीदार हो। राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्व बेनी प्रसाद के डॉक्टर जे एच रोज के अनुसार राष्ट्रीयता हृदय की वह एकता है जो एक बार बनने के बाद कभी भी खंडित नहीं होती। विद्वान जीवन के अनुसार राष्ट्रीयता मेरे लिए एक राजनीतिक प्रश्न बिल्कुल नहीं है, आवश्यक रूप से यह एक आध्यात्मिक प्रश्न है। राष्ट्रीयता धर्म की भांति व्यक्तिगत है, मनोवैज्ञानिक है, एक मानसिक स्थिति है तथा विचार करने, जीवित करने और अनुभव करने का एक तरीका है। डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं राष्ट्रीयता की निश्चित परिभाषा करना कठिन है, परंतु यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक क्रम में यह पृथक अस्तित्व की उस चेतना का प्रतीक है जो सामान्य आदतों, परंपरागत रीति रिवाजों, स्मृतियों, आकांक्षाओं और वर्णनीय सांस्कृतिक संप्रदायों तथा हितों पर आधारित है। राष्ट्रीयता का इतिहास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास कब और कैसे हुआ इसमें निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में राष्ट्रीयता का भावना जब हुआ होगा विकास, जब लोगों ने अपने मूल सामाजिक प्रवृत्तियों के फलस्वरूप समूहों और कबीलों में रहना प्रारंभ किया। किंतु आधुनिक यूनान में नगर राज्यों की परंपरा ने राष्ट्रीयता के स्थान पर स्थानीयता की प्रवृत्ति को जन्म दिया और रोमवासियों की राष्ट्रीय प्रवृत्ति भी विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ लुप्तप्राय हो गई। इटालियन विचारक और राजनीतिक मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। सन 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। यूरोप की यह लहर अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका तक पहुंची और फ्रांस में अमेरिका की क्रांतियों कई लपेटों ने समस्त विश्व में एक प्रबल राष्ट्रीय भावना जागृत की। नेपोलियन की नीति भी रूस, जर्मनी, इटली और स्पेन आदि देशों के साथ राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में अधिक सफल हुई। इसी समय बिस्मार्क ने लौह तथा रक्त नीति और मैजनी गरिवाली तथा कैबूर ने इटली के राष्ट्रीयकरण भावना को जन्म देकर उसके किरण को पूर्ण किया। 1680 के पश्चात औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म हुआ जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रीयता की यह भावना एशिया और अफ्रीका के तीव्र गति से बढ़ने लगी और द्वितीय युद्ध के बाद तो एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीयता की बाढ़ सी आ गई। राष्ट्रीयता की प्रबलता के कारण स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुए और राष्ट्रीयता की भावना के कारण आज एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, शेष प्रतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्त के लिए संघर्षरत है। राष्ट्रीयता के निर्माणक तत्व लास्की कहते हैं राष्ट्रीयता के विचार को परिभाषित करना सरल नहीं है क्योंकि यह ऐसा कोई निश्चित तत्व नहीं है जिसमें इसकी खोज किया जा सके। राष्ट्रीयता के निम्न तत्व हैं, पहला धार्मिक एकता, राष्ट्रीयता के विकास में धर्म महत्वपूर्ण योग रहता है। यहूदी तुर्क अरब क्रांतिता का प्रमुख विकास धर्म के कारण हुआ, परंतु पश्चिमी देश में भारत धर्म का प्रभाव बहुत कम है। अमेरिका के राष्ट्रीय जीवन में धर्म ने शायद ही कभी प्रयास किया हो। अतः अब राष्ट्रीयता के निर्माण में धर्म उतना महत्व नहीं है जितना पूर्व में था। हेज के अनुसार अधिकांश रूप से आधुनिक राष्ट्रीयता धार्मिक विश्वास अथवा कार्यों की एकरूपता पर बिना जोर दिए ही फलफूल रही है। रेमजे म्योर लिखते हैं, जहां कुछ उदाहरण में धार्मिक एकता ने राष्ट्रीय एकता को जन्म देने पर सबल बनाने में योगदान दिया, वहीं दूसरे उदाहरण में धार्मिक विद्वेष ने राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भारी अवरोध उत्पन्न किए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि धर्म अब राष्ट्रों के निर्माण में प्रथम तत्व नहीं रह गया है। दूसरा, समान संस्कृति तथा परंपराएं, रीति रिवाज, आचार विचार समान संस्कृति होते हैं जो एक समूह के मनुष्य को सूत्र में बांधते हैं। समानता साहित्य और इतिहास भी इसके अंतर्गत हैं। जेस के मिल के अनुसार समान सांस्कृतिक परंपराएं तथा इतिहास राष्ट्रीयता के एकमात्र आवश्यक तथा अपरिहार्य तत्व हैं। समान परंपराओं तथा निश्चित मस्तिष्क और चरित्र में प्रदर्शित होने वाली निश्चित संस्कृति के बिना राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सकता। चौथा, भाषा की एकता, एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के मन में स्वभावतः कुछ अपनत्व की भावना हो जाती है। रेमजे म्योर कहते हैं, राष्ट्र के निर्माण में भाषा जाति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। बर्नार्ड जोसेफ, भाषा राष्ट्रीयता का सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है। फिक्टे के अनुसार राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक वस्तु है, वह परमात्मा के मन की अभिव्यक्ति है, इस एकता का मुख्य बंधन भाषा है। लेकिन एक समान भाषा के बिना भी राष्ट्रीयता का विकास संभव हो सकता है और एक भाषा क्षेत्र भी पृथक पृथक राष्ट्र हो सकते हैं। उदाहरणतः स्विट्जरलैंड और भारत में एक से अधिक भाषाएं प्रचलित होने पर भी ये राष्ट्र हैं। दूसरी ओर अमेरिका और कनाडा में एक ही भाषा बोले जाने पर भी ये पृथक पृथक राष्ट्र हैं। चौथा, भौगोलिक एकता, राष्ट्रीयता का विकास में भौगोलिक एकता का महत्वपूर्ण हाथ है। सर्वप्रथम तो भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु का मनुष्यों के चरित्र और शारीरिक गठन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ऐसे मनोवैज्ञानिक गुण की उत्पत्ति हो जो राष्ट्रीयता के भावों को जन्म देते हैं। हर देश की प्राकृतिक सीमाएं राष्ट्रीयता के विकास में सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुई। हर मनुष्य में अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम होता है। भारत माता या भारत शब्द सुनते ही हमारे जीवन में स्फूर्ति और उल्लास का संचार होता है। मैजनी के शब्दों में, हमारा जन्मभूमि ही हमारा घर है, ऐसा घर जो ईश्वर ने दिया है। हमने एक ऐसे परिवार का स्थान दिया है जिसमें हमारे पर उनके प्रति अगाध प्रेम है। गिलक्राइस्ट, एक निश्चित भूभाग पर निरंतर एक साथ रहना राष्ट्रीयता के विकास के लिए आवश्यक है। इनके कुछ अपवाद भी, 1948 तक योद्धियों के पास अपना कोई देश नहीं था, लेकिन उनमें राष्ट्रीयता की भावना थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा नहीं है, फिर भी इन देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप से विद्यमान है। पांचवा, जातीय एकता, जीवन ने राष्ट्रीयता के विकास में जातीय एकता के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है, राष्ट्रीयता में एक विशेष प्रकार की आत्मिक चेतना का अभाव होता है जिसमें समान जातीयता तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किंतु दिन प्रतिदिन राष्ट्रीयता के निर्माण तत्व के रूप में जातीयता का महत्व कम होता जा रहा है। हेज कहते हैं, यदि कहीं रक्त की पवित्रता मिल सकती है तो यह केवल असभ्य जातियों के मध्य ही संभव है। पिल्सबरी और रेमजे म्योर द्वारा इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, भारत में विभिन्न जातियों के होते हुए भी इसमें एक राष्ट्र है। प्रोफेसर जोजेफ के अनुसार राष्ट्रीयता जातीयता को चीरकर पार निकल जाती है। गार्नर कहते हैं, वंश केवल एक भौतिक तत्व है जबकि राष्ट्रीयता आध्यात्मिक तथा एक मिश्रित तत्व है। वंश तथा राष्ट्र को एक समझना चारित्रिक राष्ट्र विवेक को अंगिक जीवन के समान बनाना और पशु प्रवृत्ति को भाना है। छठा, सामान्य आर्थिक हित, आधुनिक युग में राष्ट्रीयता के निर्माण में आर्थिक तत्व को पर्याप्त शक्तिशाली माना है गया। जापान एवं ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीयता का विकास प्रमुख रूप से वहां समान हितों के आधार पर हुआ। डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं, यदि आर्थिक हित राष्ट्रीयता के निर्माण में के लिए पर्याप्त हो तो हमें अनेक राष्ट्रीय जातियों की आशा करनी चाहिए जिनका निर्माण या तो केवल श्रमिकों द्वारा या केवल पूंजीपतियों द्वारा होता है। रेना ने सती कहा, आर्थिक हितों की एकता पर एक कस्टम संघ का निर्माण तो कर सकती है परंतु एक राष्ट्र का नहीं। सातवां, समान आधिपत्य तथा कष्ट, राष्ट्रीयता के विकास के कारण समान आधिपत्य तथा कष्टों का भी महत्व कम नहीं है। विदेशी शासन के प्रति घृणा के भाव, समान शत्रु और आर्थिक अवनति की समान दशा नागरिकों में एकता की भावना उत्पन्न करती है। भारत में राष्ट्रीयता का विकास के अनेक कारण थे परंतु ब्रिटिश शासन का संगठित आतंक तथा प्रशासन में विदेशी भावना ही इसका मुख्य कारण थे। जोजेफ कहते हैं, किसी एक समूह का उत्पीड़न स्वतः ही उसे राष्ट्रीयता में परिवर्तित कर देता है। आठवां, राजनीतिक क्षेत्र तथा आकांक्षाएं, राष्ट्रीयता के विकास में यह राजनीतिक तत्व दो प्रकार से कार्य करते हैं। प्रथम, भूतकालीन राजनीतिक जीवन की समानता के रूप में और द्वितीय, भविष्यकालीन राजनीतिक जीवन की आकांक्षाओं के समानता के रूप में। ऊपर जिन तत्वों की विवेचना की गई है वह राष्ट्रीयता के विकास के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं, परंतु राष्ट्रीयता ये सीमा तत्व राष्ट्रीयता के लिए अनिवार्य नहीं है। डूगल कहते हैं, राष्ट्रीयता की वास्तविक खोज भौगोलिक प्रदेश, वंश, भाषा, इतिहास व आर्थिक समानता आदि में करना उचित नहीं है। इनमें से प्रत्येक और ये सभी तत्व या तो ये वास्तविक और महत्वपूर्ण होते हैं और इतिहास के निर्माण एवं राष्ट्रों के अस्तित्व पर इनके द्वारा प्रभाव डाला जाता है, परंतु राष्ट्रीयता के निर्माण में ये तत्व अप्रत्यक्ष रूप से प्राणियों के भाव में विचारों, राष्ट्रों और अनुभवों को प्रभावित करते हुए भाग लेते हैं। वस्तुतः राष्ट्रीयता लोगों के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जीवन का भेद नहीं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। राष्ट्रवाद एक वरदान के रूप में, राष्ट्रवाद किसी शुद्ध और सही अर्थों में समझा जाए और संयमित रूप में ही अपनाया जाए तो यह निश्चित रूप से वरदान है और यह विश्व की अनेक समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक सीमा तक सहायक हो सकती है। इन्हीं कारणों से अनेक व्यक्तियों ने राष्ट्रवाद को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। राष्ट्रवाद को निम्नलिखित आधार पर मानव जीवन के वरदान कहा जा सकता है। पहला, राष्ट्रवाद देशभक्ति का प्रेरक है। राष्ट्रवाद की भावना से उत्पन्न भ्रातृत्व भाव के आधार पर व्यक्ति अपने ही देश में रहने वाले व्यक्तियों के हितों में कार्य करते हैं और देश के गौरव के लिए प्रत्येक व्यक्ति बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर होता है। उस प्रकार राष्ट्रवाद स्वदेश प्रेम को जन्म देता है। दूसरा, राष्ट्रवाद एक संयोग तत्व है। यह इसके अंतर्गत भाषा, जाति और धर्म के अनेक भेद होते हैं, परंतु राष्ट्रीयता की भाव बलवती होती है और समस्त भाषा के भेद भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राष्ट्र शब्द कैसा प्रतीक है जिसके नाम पर व्यक्ति सभी भेद भूल जाते हैं। तीसरा, राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है क्योंकि यह वास्तविक रूप में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का एक प्रकार है, जो स्वीकार करता है कि एक देश की जनता को राजनीतिक व्यवस्था और शासन करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यूरोप के इतिहास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस देश में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो वहां की जनता कभी भी विदेशी अथवा निरंकुश व गैर जिम्मेदार शासन को सहन नहीं कर सकती है। चौथा, राष्ट्रवाद साहित्य और संस्कृति का विकास करता है। महाकवि होमर की कविताओं राष्ट्रीय कविताओं ने बहुत अधिक योग दिया था यूनान के राज्यों में साहित्य और संस्कृति के विकास में, और फ्रांस में राष्ट्रपति विजातकों से प्रेरित होकर दांते और वाल्टेयर ने अपने अमर कृतियों की रचना की। टेनिसन, स्टीफन स्पेंसर, वाल्टर रेले, सेल तथा थॉमस पेन ने राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर साहित्य की सेवा की। आधुनिक भारत में मैत्री शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और श्यामनारायण पांडे आदियों के विचार राष्ट्रीयता से प्रेरित थे। पांचवा, राष्ट्रवाद राज्यों को अस्थायी बनाती है। वर्गीस के शब्दों में राष्ट्रीयता राजसत्ता और स्वाधीनता के संबंध की समस्या का समाधान उपस्थित करती है। इस कारण यह परम शक्तिशाली राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ अधिक अस्थायी भी है। छठा, राष्ट्रवाद विभिन्नताओं की रक्षा करता है। जिस प्रकार उपमन का सौंदर्य उसमें खिलने वाले विभिन्न फूलों से ही होती है, उस प्रकार मानव सभ्यता और संस्कृति के उत्थान हेतु एकता के साथ साथ विभिन्नता भी आवश्यक है। अतः राष्ट्रवाद विभिन्नताओं को नष्ट कर एकता उत्पन्न करने के बजाय विभिन्नताओं में ही एकता उत्पन्न करता है। सातवां, राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विकास में सहायक होता है। यद्यपि कुछ लोग राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद को परस्पर विरोधी चित्रित करते हैं, परंतु वास्तव में राष्ट्रवाद ही वस्तु है जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जब तक व्यक्ति अपने घर वालों से प्रेम नहीं करता, तब तक वो अपने से प्रेम नहीं करता। उसी प्रकार संसार के समस्त राष्ट्रों से प्रेम करने के लिए आवश्यक है व्यक्ति अपने राष्ट्र प्रेम सीखे। इस प्रकार राष्ट्रवाद को अपने विशिष्ट रूप में देश प्रेम और विश्व प्रेम का पर्यायवाची कहा जा सकता है। राष्ट्रवाद अभिशाप के रूप में, विशुद्ध देश प्रेम कभी भी बुरा नहीं हो सकता, किंतु राष्ट्रवाद या देश प्रेम की यह भावना व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से संबंध रखती है और व्यक्ति अपने देश के प्रति यह प्रेम कभी कभी इतना उग्र और संकीर्ण हो जाता है कि वह अभिशाप के रूप में परिणत हो जाता है। इसके निम्न आलोचक है। पहला, राष्ट्रवाद प्राय शोषण तथा स्वार्थ साधन की ओर ले जाता है। राष्ट्रवाद की भावना प्राय बहुत शीघ्र उग्र हो जाती है और अहिंसा तथा अहंकार को जन्म मिलता है। व्यक्ति अपने राष्ट्र को ही सब कुछ समझकर अन्य राष्ट्रों के मूल पर अपने स्वार्थ साधन करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की भर्त्सना कहते हुए एक समुचित जाति का संगठित स्वार्थ कहा है। उनके शब्दों में, आत्मपूजा स्वार्थी उद्देश्यों की संगठित शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हेज, राष्ट्रपति जाति या राष्ट्र के संबंध में अभिमान और गर्व एक भारी मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें राष्ट्रों के प्रति तुच्छता और विद्वेष के भाव होते हैं। दूसरा, राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद का प्रतिकूल है। एक राष्ट्र एक सिद्धांत राष्ट्रवाद का विचार का तार्किक परिणाम है। अतः राष्ट्रवाद की भावना के कारण राज्यों का दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विचारों की प्रगति रुक हो जाने से विश्व सरकार संबंधी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकी। प्रोफेसर जोसेफ लिखते हैं, राष्ट्रवाद एक भयानक सिद्धांत है और विश्व के विकास में प्रमुख बाधा है। तीसरा, राष्ट्रवाद सैन्यवाद और युद्ध को जन्म देता है। संकीर्ण राष्ट्रवाद सैन्यवाद की ओर प्रवृत्त करता है जिसका अंतिम परिणाम युद्ध होता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण राष्ट्रवाद है क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के नागरिक एक दूसरे को अपना समझदूत सहित रहे और भावनाओं के प्रचलन के कारण। चौथा, राष्ट्रवाद का परिणाम साम्राज्यवाद है। राष्ट्रवाद उग्र रूप ग्रहण करने पर अपने नागरिकों को बहुत स्वार्थी और अंधा देशभक्त बना देता है। उनमें झूठे अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है और वे मेरा देश सही या तो गलत, मैं उसके साथ हूँ का कम करते हैं और इससे देश पिछड़े हुए देश की ओर शोषण की ओर प्रवृत्त होते हैं। 1880 से 1974 तक का यूरोप इसका उदाहरण है। पांचवा, राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता सिखाता है। आत्मनिर्भरता कुछ विदेश संदर्भों में एक अच्छा शब्द प्रयुक्त होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की यह मांग है कि राष्ट्र आत्मनिर्भरता के स्थान पर परस्पर निर्भरता के मार्ग को अपनाए। इस प्रकार राष्ट्रवाद में सभ्यता और संस्कृति के विकास और विनाश दोनों के बीच निहित है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने विशुद्ध रूप में राष्ट्रवाद मानव जाति का सबसे बड़ा मिथ है, किंतु राष्ट्रवाद की यही भावना जब उग्र रूप ग्रहण कर लेती है तो इस विभिन्न राष्ट्र अपने स्वार्थ साधन के लिए शोषण के मार्ग पर प्रदत्त हो जाते हैं जिनका अंतिम परिणाम सैन्यवाद और युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि लोकप्रिय शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय गमनागमन द्वारा जातीय अहिष्णुता और राष्ट्रीय अहम को नष्ट कर राष्ट्रवाद को विशुद्ध रूप प्रदान किया जाए। ऐसा होने पर ही इस बात की आशा की जा सकती है कि राष्ट्रवाद मानव कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। हमारा प्रयत्न राष्ट्रवाद को विशुद्ध रूप से परिष्कृत रूप प्रदान करना है। हेज कहते हैं, जब राष्ट्रवाद पवित्र देशभक्ति का पर्यायवाची बन जाता है तो उस समय यह मानव जाति तथा विश्व के लिए एक आधार सिद्ध हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, राजनीतिक राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचना की जाती है और यह आलोचना किस हद तक सही है। दूसरा, एक राजनीतिक आदर्श के रूप में राष्ट्रवाद के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तीसरा, राष्ट्र और राज्य के अंतर स्पष्ट कीजिए और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पांचवा, राष्ट्रवाद सभ्यता के लिए विभीषिका है, क्या आप इससे सहमत हैं? राजनीतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का आधुनिक समय में किन आधारों पर आलोचना की जाती है? यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा बीए प्रथम वर्ष हेतु राजनीति विज्ञान के सिद्धांत पुखराजन की पुस्तक के द्वारा सुजीत कुमार हेतु 21 दिसंबर 2007 को की गई है।